ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक की बर्खास्ती के विरोध में विपक्ष ने संसद के दोनों सदन किए अवरुद्ध। आर्थिक स्थिति कमजोर रहे बच्चों का किया जाएगा निःशुल्क हृदय का उपचार। भूमि अध्यादेश को नियमित विधेयक बनाने का सरकार का निर्णय। इटहरी में 6 घंटे तक धधकी आग पर काबू, 11 लोग सुरक्षित निकाले गए और दक्षिण कोरिया में भीषण आग में 26 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। सरकार द्वारा नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक कुलमान घिसिंग को बर्खास्त किए जाने के विरोध में प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक को विपक्षी दलों ने अवरोध किया। प्रतिनिधि सभा की आज की दोनों बैठकें शुरू होते ही विपक्षी दलों के सांसदों ने उठकर अवरोध शुरू कर दिया। विपक्षी दलों द्वारा प्रतिनिधि सभा की बैठक में अवरोध जारी रखने के बाद सभामुख देवराज खिमरे ने विपक्षी सांसदों से सरकार का जवाब मांगने संबंधी मुद्दे पर ध्यान देने और सभा को आगे बढ़ाने में सहयोग करने का आग्रह किया था। हालांकि सभामुख के बार बार आग्रह के बावजूद विपक्षी सांसदों ने अवरोध जारी रखा, जिसके बाद खिमरे ने बैठक को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया था। सुबह 11 बजे के कुछ देर बाद शुरू हुई पहली बैठक आधे घंटे के लिए स्थगित की गई, लेकिन सूचना जारी कर दोपहर 3 बजे के बाद ही दूसरी बैठक आयोजित की गई। दूसरी बैठक के शुरू होते ही कार्यकारी निदेशक घिसिंग की पदमुक्त पर सरकार का स्पष्ट जवाब मांगते हुए विपक्षी दलों ने फिर अवरोध किया। विपक्षी सांसदों द्वारा लगातार बैठक अवरोध किए जाने के बाद सभामुख घिमरे ने बैठक को चैत 11 गति अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में विपक्षी दलों ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक कुलमान घिसिंग को हटाए जाने के मामले में प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए सदन की कार्यवाही अवरुद्ध कर दी। सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल द्वारा बैठक शुरू करते ही विपक्षी दलों के सांसदों ने उठकर विरोध जताया। हालांकि सभा अध्यक्ष के बार बार अनुरोध के बावजूद विपक्षी सांसद नहीं बैठे, जिसके बाद दाहाल ने बैठक को 15 मिनट के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इससे पहले भी प्रतिनिधि सभा में विपक्ष ने घिसिंग की बर्खास्ती के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगते हुए कार्रवाई रोक दी थी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने मनमाने तरीके से एक योग्य अधिकारी को हटाया है, जबकि सरकार का कहना है कि यह निर्णय प्रशासनिक आधार पर लिया गया है। बैठक स्थगित होने के बाद अब सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर चर्चा जारी है। अगली बैठक में सरकार की ओर से स्पष्टीकरण दिए जाने की उम्मीद है। इससे पूर्व प्रतिपक्षी दलों की आज हुई बैठक में नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक कुलमान घिसिंग को पदमुक्त करने के विषय में विरोध जताने का निर्णय किया था। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक कुलमान घिसिंग की बर्खास्ती पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से संतोषजनक जवाब देने की मांग की है। नया बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अध्यक्ष दाहाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ओली द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने तक प्रतिनिधि सभा की बैठक नहीं चलने देंगे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र सहित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और नेकपा एकीकृत समाजवादी के सांसदों ने आज प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा की बैठकों में घिसिंग की बर्खास्ती का विरोध जताया था। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज स्पष्ट किया कि नेपाली जनता द्वारा संघर्ष कर हासिल किए गए अधिकारों को छीनने की शक्ति किसी में नहीं है। उन्होंने युवाओं से देश हित में किसी भी चुनौती का सामना करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि युवाओं में देश और जनता के लिए किसी भी परिस्थिति का सामना करने की क्षमता है। उन्होंने नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक कुलमान घिसिंग की बर्खास्ती पर चर्चा को खारिज करते हुए कहा कि एक कर्मचारी को पद से हटाने पर प्रधानमंत्री को जवाब देना आवश्यक नहीं है। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि सरकार के निर्णय प्रशासनिक आधार पर लिए गए हैं और इन्हें राजनीतिक रूप से उछालना उचित नहीं है। सत्तापक्षीय दलों की बैठक ने भूमि अध्यादेश को नियमित विधेयक के रूप में आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री निवास बालोटार में आज हुई सत्तापक्षीय दलों की बैठक ने ऐसा निर्णय किया। ये जानकारी नेपाली कांग्रेस के प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे ने दी। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने शहीद गंगालाल राष्ट्रीय हृदय रोग केंद्र में 15 वर्ष से कम उम्र के गरीब परिवारों के बच्चों का निःशुल्क हृदय उपचार करने का निर्णय किया है। स्वास्थ्य मंत्री और केंद्र संचालक समिति के अध्यक्ष प्रदीप पौडेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। केंद्र के कार्यकारी निदेशक रवि मल्ल ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के हृदय कैंसर संबंधी उपचार निःशुल्क किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी गरीब बच्चे को उपचार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने केंद्र को प्रत्येक बच्चे के हृदय उपचार और सर्जरी के लिए 2,50,000 रूपये की सहायता प्रदान की है। इसी वित्तीय वर्ष में अब तक 480 बच्चों को निःशुल्क हृदय सर्जरी सहित उपचार सेवा प्रदान की जा चुकी है। मल्ल ने बताया कि नेपाल में हर 1,000 बच्चों में से 8 से 10 को हृदय संबंधी समस्याएं देखी जाती हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक अभाव के कारण कोई भी बच्चा उपचार से वंचित न रहे, इसके लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रबंध किया जा रहा है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *14## गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। अर्घाखाँची के भुवनपाटा में आज शाम हुई बस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य 15 लोग घायल हो गए। शीत गंगा नगरपालिका वार्ड नंबर 2 सीतापुर के भुवनपाटा में बस दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। ये जानकारी प्रहरी कार्यालय के प्रहरी निरीक्षक विष्णु प्रसाद पौडेल ने दी। उनके मुताबिक घायलों में से 7 लोगों को इलाज के लिए लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल और 8 लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ढाडा भेजा गया है। बता दें कि घटना के विषय में जांच की जा रही है। इटहरी मुख्य चौक स्थित व्यावसायिक भवन सेंटर प्लाजा में आज सुबह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सुरक्षा बलों ने जोखिम भरी ऑपरेशन के बाद 11 लोगों, 3 महिलाएं और 8 पुरुष को सुरक्षित निकाला। बता दें कि आग पर काबू किया जा चुका है। ये भवन इटहरी का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है, जहां कई दुकानें और कार्यालय स्थित है। नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा रस्सी के माध्यम से फंसे लोगों को बचाया गया। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि कुछ ताकतें समाज में ये भ्रामक संदेश फैलाने की कोशिश कर रही है कि लोकतंत्र और गणतंत्र कुछ नहीं कर पाए, इसलिए अब विकल्प तलाशना चाहिए। आज युद्ध बारूद यंत्र कार्यालय के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह में गृहमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि पहले राजतंत्र के दौरान भी संचार माध्यमों और जनता की आवाज को दबाया जाता था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के खिलाफ ऐसी नकारात्मक बातें फैलाना देश के लिए खतरनाक है। सिमलका घट सिंचाई नहर निर्माण में 14 लाख रुपए के अनियमित भुगतान के मामले में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने बझांग की खपतर छानना गांव पालिका के पूर्व अध्यक्ष सहित 7 व्यक्तियों के खिलाफ विशेष अदालत में भ्रष्टाचार का मुकदमा दायर किया है। आरोप है कि आर्थिक वर्ष 2076-77 में सिंचाई नहर निर्माण के लिए धनराशि आवंटित की गई थी, लेकिन 2077-78 में कोई कार्य नहीं करते हुए 14 लाख रुपए का अनियमित भुगतान किया गया। मामले में गांव पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष वीर बहादुर रोकाया और वार्ड नंबर 4 के तत्कालीन वार्ड अध्यक्ष भीम बहादुर रोकाया सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। सरकार ने विभिन्न सामाजिक संजालों से 1 महीने के भीतर नेपाल में पंजीकरण करवाने का आग्रह किया है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय ने एक सूचना जारी कर फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे सामाजिक संजालों को 1 महीने के भीतर नेपाल में पंजीकरण करवाने को कहा है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो कानून के मुताबिक बंद किया जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिण कोरिया के दक्षिण पूर्व में स्थित जंगलों में लगी आग लगातार बढ़ती जा रही है। इस घटना में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 19 लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी दक्षिण कोरिया के आंतरिक और सुरक्षा मंत्रालय ने दी है। इस बीच अधिकारियों ने बताया है कि आग बुझाने में जुटा एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ, इसकी जांच की जा रही है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक की बर्खास्ती के विरोध में विपक्ष ने संसद के दोनों सदन के अवरुद्ध आर्थिक स्थिति कमजोर रहे बच्चों का किया जाएगा निशुल्क हृदय का उपचार, भूमि अध्यादेश को नियमित विधेयक बनाने का सरकार का निर्णय, इटहरी में 6 घंटे तक धर की आग पर काबू, 11 लोग सुरक्षित निकाले गए और दक्षिण कोरिया में भीषण आग लगने से हुई 26 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।